राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 19 मई 1993 सायं लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण।
ये मनः प्रसाद सौम्यत्वम् पूछ रहे हैं सौम्यत्वम ये सौम्यता क्या है, मन की सौम्यता क्या है?
तो मन में है सौम्य भाव, क्रूर भाव, सद्भाव, असद्भाव। सौम्य भाव भी है, क्रूर भाव भी है। क्रूर तो है ना, दूसरे पर असर डाले वो मन में तीक्ष्णता हो वो क्रूर भाव होता है। सौम्य भाव शांत भाव, प्रसन्न भाव मन में देखा है, मन की प्रसन्नता। मन प्रसाद है सौम्य तुम सौम भाव क्षमा भाव, ये तो मन का ही होता है। इसमें क्या शंका है बोलो?
सौम्यता समझे नहीं है, ऐसा लगा कि सौम्यता किसे बोलते हैं?
मानो हृदय में सौम्य भाव, एक आदमी का स्वभाव होता है वो क्रूरता होती है, कठोर शब्द बोलता है, दूसरे को दुख दे देता है भाव वचनों के द्वारा। तो वे पहले भाव तो मन में ही होते हैं ना। सौम्य भाव है शांत भाव, जैसे 7 भाव है तो रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तो शनि रवि मंगल एक क्रूर ग्रह है, सोम है बुध है बृहस्पति शुक्र है, ये सौम्य ग्रह है। क्यों मैं ये 4 सौम्य ग्रह 3 क्रूर ग्रह है, तो क्रूरता का भाव न हो, सौम्य भाव शांति का मन में क्रूरता न हो। क्रूरता से लोग डरते हैं, सौम्य भाव से लोग डरते नहीं। सौम्य भाव जिसके मन में होता है वो सबको अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, और क्रूर भाव होते हैं उसे लोग डरते हैं। तो भाव तो मन का ही होता है। और सुनो मैं और जो कमल यही होता हूँ, फिर विशेष व्याख्या तो आती नहीं है, पर और पूछो और आ जाएगी, और कोई बात कह देंगे। ठीक हो गया,
जिनका है वो बोला तो पता चला।
हाँ।
आप कहते हैं कोई इच्छा न रख करके कर्म करो। इच्छा नहीं रखेंगे तो घर में टीवी कैसे आएगी, मोटर गाड़ी कैसे आएगी, फैक्ट्रिया कैसे चलेगी?
हम इच्छा नहीं करेंगे तो पता नहीं कैसे होगा, नरकों में कैसे जाएंगे, तो ऐसे कैसे जाएंगे बिना इच्छा के?
तो संसार काम ही नहीं चलेगा बिना
काम नहीं चलेगा तो नहीं है, पर नरकों में नहीं जा सकते, 84 लाख में नहीं जा सकते, बिना कामना किए नरकों में नहीं जा सकते। मुश्किल तो ये होगी, संसार काम तो ठीक चलेगा बिना इच्छा के, अच्छा चलता है। अभी इस बात का पता नहीं है, लोग समझते हैं हम इच्छा करने से धन मिलता है, इच्छा से धन मिले तो सबके सब लखपति रूपी हो जाए, पर वो समझते नहीं। क्या बताओ, एक बात कहते क्षमा कर देना भाई, सब सबसे क्षमा मांग लेता हूँ, खुद में तो अक्ल नहीं दूसरे ही मानते नहीं, अब क्या करें? तीर से कोई उपाय नहीं। व्याख्यान करने वाले, विषयों को उपदेश देने वाले हम लोग हैं, उनके भी बात समझ में नहीं आती कि बिना इच्छा कैसे काम चलेगा। तो इच्छा से काम थोड़ा चलता है। इसके लिए खास आपको सोचना है कि मन की इच्छा के अनुसार काम होता है क्या। दूसरी बात, क्या मन की इच्छा के अनुसार काम होता ही नहीं। इस पर मेरा जो विचार है, मैंने इसमें सोचा है, वो आपके सामने रखूं कि कभी कभी मन की इच्छा करते वैसे काम हो जाता है, कभी इच्छा नहीं करते हो जाता है, कभी हम चाहते हैं और ही हो जाता है। तीनों कारण बातें होती है। आप जीवन में देखो, केवल पुस्तकें पढ़ो सुनो इससे नहीं, जीवन अनुभव करके देखो। कभी हमारी मनचाही हो जाती है और कभी मनचाही नहीं होती है। कभी अचानक ऐसी हो जो हम चाहते नहीं चाहते ऐसी हो जाती है। ये घटना होती है कि नहीं होती? बोलो भाई, कोई बोलो, इसके विरुद्ध कोई बोलना सब बोलो, कोई बोलो। तो इच्छा के अनुसार काम नहीं होता है, पर तो आप ख्याल रखते ही नहीं। आप कहते नहीं, इच्छा से ही जो होता है, बिना इच्छा कैसे काम होगा।
नहीं कर्म लगे क्यों?
अरे कर्म करने के इच्छा त्याग करता ही नहीं। मैं कभी नहीं कहता कि कर्म मत करो, कर्म करने की इच्छा तो रखो, फल की इच्छा मत रखो।
फल की इच्छा बिना कर्म करें क्यों, क्या मतलब?
देखो, कर्म का एक फल होता है, एक उद्देश्य होता है। ठीक समझ, इस विषय को ठीक समझ लो कृपा करके। बार बार मैं कह दूंगा, पूछोगे तो मैं कहूंगा बार बार। मेरे मन में ऐसी है कि जैसी मेरे उपस्थिति है मैं जानता हूँ, वैसी आप लोग सबके सब जान जाए। इस वास्ते मेरे कहने में संकोच नहीं होता है। एक होती है इच्छा, एक होता है उद्देश्य। एक कामना होती है, एक उद्देश्य होता है, एक ध्येय होता है, एक लक्ष्य होता है। ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य ऐसा, और ये कामना, इच्छा, वासना, तृष्णा, आशा, ऐसा ये दो विभाग है। जैसे परमात्म तत्व की प्राप्ति की इच्छा करें, ये इच्छा नहीं है, ये कामना नहीं है, ये कामना रहित बनाने की इच्छा है। संसार की कामना करें, ये इच्छा का तांता लग जाएगा, इच्छा ही इच्छा पैदा होगी, इसका अंत कभी नहीं होगा। इस वास्ते कामना अलग चीज है और उद्देश्य एक लक्ष्य है। मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये हमारा उद्देश्य है। तो इसमें इच्छा में उद्देश्य में फर्क क्या आया? इच्छा होती है कर्म का फल और उद्देश्य होता है परमात्म तत्व, जो फल नहीं है, स्वतः से तत्व है। फल वो होता है जो उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने वाली चीज की इच्छा करनी कामना है, और अनुत्पन्न है, सदा नित्य निरंतर है, उसकी प्राप्ति का उद्देश्य होता है, वो कामना नहीं होती है, वो कर्म का फल नहीं होता है। मान लेते हैं कि हमारे कर्म का फल है, भक्ति कर्म का फल है, श्रवण मनन निर्ध्यास ये इसका फल है, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति इसका फल नहीं है। ये अच्छे अच्छे बातों समझ में नहीं आती है। अच्छे अच्छे पंडित की इनका दोनों विश्लेषण नहीं करते, कर नहीं सकते। इस विषय में आप पूछो तो मेरा अध्ययन है, मैंने इस विषय में अध्ययन किया है, पुस्तकों को देखा है, संतों को सुना है, प्रश्नोत्तर किया है, इस विषय को समझने की मेरे धुन रही है। इस बात से बहुत दूर तो मैं समझता हूँ। आप खूब शंका करो उसमें। कामना उत्पन्न नष्ट होने वाली वस्तु की होती है, नित्य निरंतर रहने वाली वस्तु की कामना नहीं होती है। वो उद्देश्य होता है, वो लक्ष्य होता है, वो ध्येय होता है। तो परमात्म तत्व ये प्राप्ति की इच्छा है वो इच्छा नहीं है, वो उद्देश्य है, वो ध्येय है, वो लक्ष्य है। क्योंकि परमात्मा नित्य है, निरंतर है, उसकी कामना कैसे, कामना तो नाश होने वाले पदार्थ में होती है, दो भी भाग है। इस दूसरे भाग से ऐसा बतावे, एक कामना होती है, एक आवश्यकता होती है, दो भाग, ये दो भाग होता है पहले, अब दो भाग और बताता हूँ। एक कामना होती है, एक आवश्यकता होती है। तो इस दोनों के भागों को अलग अलग नहीं जानते। बहुत ही अच्छे अच्छे पंडित, अच्छे अच्छे समझदार, वो भी इन दो विभागों को नहीं जानते। मैं तो नहीं जानता था, वर्षों तक व्याख्यान देता था, गीता की व्याख्या करता था, लोगों को सुनाता था, मैं इस भेद का मैं पता नहीं था, पीछे पता लगा है। आप लोग कृपा करो, इन बातों को जानने की इच्छा करो, तो मेरे को लाभ होगा, आपको लाभ होगा, दुनिया को लाभ होगा। जैसे भूख लगी आपको, तो भूख है वो है अन्न की आवश्यकता, और अमुक भोजन मिले, मीठा अच्छा लगे, चरपड़ा अच्छा लगे, ये अच्छा, ये है इच्छा। तो भूख है वो तो अन्न चाहती है, अन्न दे दो, चाहे साग पत्ती दे दो, चाहे कुछ दे दो, पूरा कर दो, तो आवश्यकता की पूर्ति होती है, इच्छा की वृद्धि वृद्धि होती है, पूर्ति होती नहीं कब, अनेक जन्मों तक आप करो तो इच्छा की पूर्ति कभी नहीं होगी। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी जो मिला गया, जो और इच्छा होगी, फिर इच्छा मिली, फिर इच्छा पैदा हुई, इच्छा से इच्छा ही इच्छा पैदा होती, फिर पैदा, फिर इच्छा ही इच्छा पैदा होती, इच्छा ही इच्छा पैदा होती। यार आवश्यकता पैदा नहीं होती, आवश्यकता पूर्ति होती है। तो परमात्म तत्व की तो आवश्यकता और संसार शरीर के लिए अंग की आवश्यकता है, नींद की आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है, इसकी जो इच्छा होती है तो आवश्यकता अनुसार इच्छा होती है, तो आवश्यकता भी इच्छा होती है, मन इच्छा और आवश्यकता दूरी है, दो है। आवश्यकता है पेट खाली है तो इसमें कुछ रूप भर दो, आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी, इच्छा की पूर्ति थोड़ी हो जाएगी। जैसे मनुष्य की भूख लगती है, ऐसे सड़क पर इतना खाड़ा पड़ गया, अब वहां से मोटर लचकेगी तो वह क्या है, भूख है, वह मानो सड़क की इतनी कमी है तो उसको भर दो, मोटर से भर दो, कपड़ा से भर दो, रेती से भर दो, ठोस कपड़ा जमा कर ठोस भर दो, ठीक लगी। तो वह इच्छा नहीं है, वो आवश्यकता है, उतनी कमी है उसकी पूरी कर दो। तो कमी देख कर के भी इच्छा होती है और भूख को देख करके भी इच्छा होती है। इस वास्ते इच्छा के और आवश्यकता के भेद को जल्दी आदमी नहीं समझता है। बड़े बड़े ग्रंथों में इसका विवेचन नहीं आता है, बड़े बड़े अच्छे पंडित, अच्छे संत, उनके विवेचन में कितना विवेचन नहीं आता है। मेरे तो इस विषय के जानने की बड़ी इच्छा रही है, अब भी है। इनके पुर्जे पुर्जे हम जाने ठीक तरह से, ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, गहरे उतर कर समझे, तो इच्छा क्या है, कामना क्या है, आवश्यकता क्या है। तो मनुष्य मात्र की आवश्यकता है परमात्मा की, और संसार की जैसे भूख है, प्यास है, ज्यादा लगता है और बीमारी हो गई है, तो इसमें भूख के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता है। जैसे प्यास लगी तो पेय पदार्थ की आवश्यकता है, ऐसे रोग हुआ तो दवाई की आवश्यकता है। तो आवश्यकता की भी इच्छा होती है, और आवश्यकता पूरी होने पर फिर इच्छा होती है, वो इच्छा ही इच्छा है। वो लाखों करोड़ों अरबों रुपया मिल जाए तो इच्छा पूर्ति हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, असंभव है, इच्छा पूर्ति होगी ही नहीं, और आवश्यकता पूरी हो जाएगी, आवश्यकता बाकी रहती ही नहीं, क्योंकि वो आवश्यकता है। इसमें आप शंका करो तो बहुत खुलेगा विषय। आप मेरी बात समझ गए कि नहीं, पता नहीं हमें।
आवश्यकता की पूर्ति होती है, इच्छा तो पूर्ति होती है, आवश्यकता की पूर्ति होती है।
हाँ
ठीक है,
तो उस बात पर आवश्यकता को इच्छा करते हैं, इच्छा नहीं करें तो रोटी कैसे खाएंगे हम, इच्छा नहीं कर तो हम सेम कपड़े कैसे उठेंगे, कैसे कैसे मरेंगे, ऐसे करेंगे। अरे भाई ये विषय इच्छा दूसरी चीज है, आवश्यकता दूसरी चीज है, आवश्यकता की पूर्ति हो न भी हो पर प्राय आवश्यक पूर्ति होती है, न होती इतनी भूख लगे भूखों में मर जाए हम प्राण चल रही बात हो सकती है, बिना अन्न के बिना जल के हम मर जाए पूर्ति नहीं भी होती तो मर जाएंगे, परंतु आवश्यकता की प्राय पूर्ति होती है। तो मात्र जीव के आवश्यकता तो है परमात्मा की और इच्छा करते हैं संसार की अनुकूलता की सुख सुविधा की, आराम से रहे सुखपूर्वक रहे अच्छी तरह से रहे, साधन के लिए इच्छा होती है एकांत में जाकर भजन करें, तो ये इच्छा तो हरेक होती है, हमारी भी हुई है बहुत बार होती है, हम जाते हैं एकांत में वो सोना अच्छा नींद अच्छी लगती है, आराम अच्छा मिलता है एकांत में, तो एकांत चीज एक दूध की तरह है, दूध होता है ना निरोगता उन्हें बहुत बढ़ाता है, और सही में रोग होते रोग को बढ़ाता है, जो है उसी को बढ़ा दे, एकांत रजोगुण को बढ़ा दे तमोगुण को बढ़ा दे सदोगुण को बढ़ा दे, तो हम से आदमी है तो एकांत नींद ज्यादा रहेगा, समझा भी तो नींद रहे सबका, तो नींद को बढ़ा देगा एकांत, रजोगुण तो चिंतन संसार का बहुत जल्द याद आएगा, तो रजोगुण को बढ़ा दिया एकांत ने, एकांत दूध की तरह है, ऐसे भजन ध्यान करता भजन ध्यान बढ़ा देते एकांत, तो एकांत मुक्ति देने ये थोड़ी बात है, जैसा आदमी हो उसके अनुसार वो एकांत काम करेगा, तो संसार की परिस्थिति है वो परिस्थिति का सदुपयोग किया जाए दुरुपयोग किया जाए, दोनों किए जा सकते हैं, दुरुपयोग करके पतन होगा सदुपयोग करके कल्याण होगा। सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव चराचर जातत देही नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति सुदेनी, तो ये शरीर से नरक भी जाए नरक स्वर्ग तो महिमा है इसकी, बोली भाई महिमा में नरक सब जो है को महिमा में नरक आना चाहिए, दुर्लभ मानुष देही दुर्लभ है क्यों इसे नरक मिल जाते हैं ये महिमा हुई क्या, तो इसका दुरुपयोग कर नरक मिलते हैं, सदुपयोग से भगवान मिलते हैं भगवान का प्रेम मिल जाता है, तो महिमा सदुपयोग दुरुपयोग की है, लोग सबसे धन की धन का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों होता है, विद्या का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों होता है, आप सत्संग करते हो सत्संग का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों होता है, जो आपके सामने परिस्थिति आती है उसका सदुपयोग भी होता है दुरुपयोग भी होता है, दुरुपयोग क्या है बातें बहुत सीख ली और सीख ली उसको बल देगा भाई ज्ञान हो गया, फिर सीखा हुआ ज्ञान नहीं होता है मान लेगा मुक्त मान लिया मुक्त हो गया, बिल्कुल गलती बात है, सोलह नहीं गलती साफ की साफ, ये सीखना नहीं है, ये आवश्यकता परमात्मा जी से पूर्ति हो जाती है, फिर रहती नहीं भूख रहती नहीं, सांसारिक वस्तु पूर्ति जैसे अन्न है जल है वस्त्र है मकान, ये चार चीज है हमारे दरबार में, ये चार चीज है ऐसा घर तो औषध है, तो ये तो आवश्यकता है शरीर की, और बढ़िया गद्दा मिले बढ़िया मकान मिले बढ़िया भोजन मिले बढ़िया जल मिले बढ़िया औषध मिले, ये इच्छा है, वास्तव अवसर की पूर्ति होती है नहीं होती तो मर जाते हैं, परंतु इच्छा और है और कामना इच्छा और आवश्यकता और चीज है, इन दोनों के भेद को समझना चाहिए। अब इसमें शंका हो तो पूछो, आपके मन में कोई शंका हो तो पूछो, मैं शर्म की बात कहता हूं मैंने अध्ययन किया है, ये अभिमान की बात है, इस विषय में मैंने अध्ययन किया है, अगर आप पूछोगे तो मेरा अध्ययन बढ़ेगा मेरी पढ़ाई बढ़ेगी मेरा विकास होगा, कामना और चीज है, आवश्यकता और चीज है। तो भगवान की इच्छा होगी ये भी कामना है। तत्व चिंतामणि दूसरे भाग में आधे से दूसरे आधे तत्वज्ञान दूसरे भाग से अगली भाग में ये प्रश्न आया है, जिसमें शेर जी ने इसका विश्लेषण किया है। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा ही है। पूछने वाले ने पूछा है संसार की इच्छा कौड़ियों की इच्छा है और परमात्मा की रत्नों की इच्छा है, तो वो इच्छा कैसा नहीं है? वो इच्छा बड़ी मूल्यवान की इच्छा है। लोग बेचारे धन पैसा की इच्छा करते हैं, ऐसा प्रश्न किया। तो बड़ी भारी कीमत चीज की इच्छा ही तो है वो। तुम भजन करते हो, तुम्हारी इच्छा है, कामना है तुम्हारी। हर एक आदमी सर कह देगा कामना बिना कैसे हो? भजन करते हो, सत्संग करते हो, ये इच्छा है नहीं तुम्हारी? मेरे सत्संग मिल जाए, भगवान मिल जाए, हमारी मुक्ति हो जाए, ये भी तो इच्छा ही है। अरे इच्छा नहीं भाई, ये आवश्यकता है। इस बार जड़ चीजों की होती है, नाशवान चीजों की होती है, अविनाशी की इच्छा नहीं होती। इच्छा भी कह दो तो ये इच्छा अनिच्छा जैसी है। शेर जी कहते हैं निष्काम, भगवान की प्राप्ति की इच्छा निष्काम है। क्यों निष्काम कैसे समझे? ऐसी बात है। अब भी मैं कह सका हूं नहीं कह सका हूं, आप तक मेरी बात मैं पहुंचा सका हूं नहीं सका हूं, इसमें मेरे संदेह है। आप पूछो तो पता लगे। आप पूछो उसमें
अन्न की आवश्यकता होने पर क्या वो स्प्रिया नहीं कहलाएगी? ऐसा पूछा है।
हाँ।
कि अन्न की आवश्यकता होने पर
हाँ।
क्या वो आवश्यकता स्प्रिया के रूप में नहीं दिखाई देगी?
स्प्रिया नहीं, स्प्रिया चीज है वो। स्प्रिया कामना, इस कामना के भेद है। एक इसकी वासना होती है, एक इसकी स्प्रिया होती है, एक इसकी इच्छा होती है, एक इसकी आशा होती है, एक इसकी तृष्णा होती है। ये तो भेद है कामना की, कामना का भेद है। तो आवश्यकता वो निर्वाह मात्र की, निर्वाह मात्र की जो अन्न की इच्छा होती है उसकी स्प्रिया परवाह होती है। इनमें कामना का अंश थोड़ा है, ज्यादा आवश्यकता का अंश है। मेरी क्या परवाह है? तो भूख लग गई तो अन्न की जरूरत तो है, पर वृद्ध है त्यागी है क्या परवाह? भूख ही सही। संत आए तो कहते आज क्या है? आज एकादशी है, तो आज मैंने छुट्टी कर दी, आज नहीं खाएंगे, छुट्टी कर दी, आज छुट्टी दे दी, नहीं खाएंगे। अब बोल छुट्टी कर दी। तो अन्न की इच्छा है, आवश्यकता है अन्न की। तो स्प्रिया क्या है? सूक्ष्म कामना है। जैसे हमारे साधु सालों की इच्छा नहीं, परंतु ज्यादा लगता है तो चाहे टाट ही हो आवश्यकता तो है उसकी, उसको स्प्रिया करते हैं। स्प्रिया, स्प्रिया का अर्थ है परवाह। हमारे परवाह इतनी जरूरत तो है, इतनी जरूरत है। तो जरूरत इतनी जोरदार इच्छा नहीं होती, थोड़ी इच्छा होती है। आवश्यकता है एक कपड़े की ओढ़ने की आवश्यकता है, उसकी जो इच्छा होती है वो स्त्रिया कहलाती है। आप किसी संत से जाकर के एक महाराज किसी चीज की आवश्यकता हो तो बताओ, ऐसे नहीं कह सकते महाराज अपने को कामना हो तो बताओ मैं पूरी करूं। कहोगे आपके तृष्णा हो तो महाराज बताओ अशुद्ध करेगी तृष्णा कहलेगी देर में कहता है। तो आवश्यकता कह सकते हैं कपड़े की, भोजन की, कोई कोई चीज, किसी चीज की आवश्यकता हो तो कृपा करो बताओ महाराज। तो आवश्यकता उसके नाम स्प्रिया है, परवाह। तो मैं थोड़ी इच्छा है उनमें, पर आवश्यकता है, आवश्यकता हुई परवाह हो गई। अरे आवश्यकता ही परवाह ही नहीं करे, आवश्यकता है नहीं 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 से। एक साधु आए थे कुछ वर्ष पहले, उसको कहा महाराज भोजन भोजन करोगे ना? तीन दिन के भूखे थे, तुमने कहने भोजन सा भोजन करोगे ना कह दिया। और पैसे बुद्धि आया भोजन पड़ी का भोजन करो चटका लिया पूछो को इच्छा है क्या है। एक बात बताऊं श्री शेठ जी थे उनकी छोटी बहन थी नारायणी बाई जो बहुत जानते हैं उसको और शेर नहीं है उनका नारायणी बाई इतनी छोटी थी कि शेर की कन्या हो जितनी इतनी छोटी थी बहुत छोटी बहन थी। तो गंगा जी कुटिया में बैठे थे सुबह का वक्त था वहां जल भी चले गए थे तो शेर जी दूध लिया करते पाव डेढ़ पाव सुबह पैर पाव भोजन के समय उनकी संग्रहणी हो गई थी तो दूध से वो मिटी तो दूध वो देते सही ठीक रहता दवाई की तरह दूध था उनका तो दूध लेकर आई मैं था नारायणी बाई थी शेठ जी तीन आदमी थे वहां तो वो ला करके और दूध दिया दूध देते तुलसी दवाई तुलसी तुलसी दल गए तुलसी लोगे गला ला के भी शेर जी दूध पी लिया दूध पीने के बाद बोलो ऐसा नहीं बोलना चाहिए तुलसी लोगे तुलसी ये चाहिए तो दे देते तो ले लेते ये साधुओं की भाषा है चाहिए फुलका लाऊं तो कहना चाहिए ना साधु की भाषा है ये नहीं समझते लोग समझते ही नहीं हमारे साथ पैसे रहने वाले भोजन कराने वाले नहीं बात नहीं समझते मिलने वाला लाओ भाई मांग लेता हूँ बड़ी हिम्मत कर मांगता हूँ मैं मेरे को मांगना नहीं पड़े तुम दे दो अच्छी बात और मेरे भूखा मरोग नहीं पास देने वाले नहीं समझते इस बात को मेरे को भोजन कराने वाले नहीं समझते पूछ तो लाऊ तो साधु का काम है ना लाऊ भोजन ना नहीं लाना हम क्यों मंगा भोजन रात पूछ पालेंगे तो इस साधुओं की इच्छा को साधुओं के व्यवहार को नहीं जानते लोग उन्हें कामना छोड़ दी आशा छोड़ दी तृष्णा स्पृहा सब छोड़ दी तो कैसा व्यवहार होता बड़ा अच्छा होता है। तो शेर जी ने दूध पी करके पीछे कहा कि मेरे को ऐसा नहीं पूछना कि तुलसी लोगे ऐसा नहीं पूछना दे देना चाहिए हम ले लेंगे तुलसी ले दूध दिया करके इतनी छोटी नारायणी कन्या वे जितनी पैदा हो जाती थी छोटी मेरे सामने ही बात है तो उसी लोगे के ना तो संतों का बर्ताव कैसा होता है महात्माओं का बर्ताव वो आदमी समझते नहीं। संतों की गत रामदास जग से लखियन जाए बाहर तो संसार सा भीतर उल्टा था तो क्या समझे कोई कैसे समझे
पूछता है कि फुलका लोगे
हाँ
क्या तो उसमें हाँ करने में इच्छा जाहिर होती है
हाँ इच्छा मांगना सिद्ध होता है। शेर जी कहते हैं कि साधु को भिक्षा मांग नहीं चाहिए तो वो बड़े बाद मेरे से एक साधु मेरे साधु ने कहा कि शेर जी वो साधु के पता नहीं है भिक्षा मांग तो थोड़ा ही है जरा आज खड़े हो गए मेरे चल दिए मांगने कैसे साधु मांगता तो नहीं साधु मांगता तो वही है साधु तो आवश्यकता है भिक्षा भी कर तो देते घूमे आए अकृत्यान लिखा है संकल्प नहीं कि अमुक के घर जाएंगे अमुक के जाएंगे ऐसा नहीं सुबह रोटी मिलती है तो वहां जाना है ये नहीं है गए स्वाभाग मिल गया ले लिया नहीं गया मिल गया मैं था मेरे नाथ साथ में हरनाथ जी थे अपने आनंद आश्रम में आए तो आनंद आश्रम एक तरफ मैं भिक्षा हो गई यही जब वे गए तो मेरे से कुछ भिक्षा आएगी तो चौक मरते उधर कोने पर मैं बैठा था इधर कोने पर नाथ जी बैठे थे उधर खपड़ लिए हुए वही मार पड़ा करते थे मैंने देखा रोटी दिखती नहीं है जाते तो खप्पड़ बिल्कुल खा ली ये बीमार कर रहे थे ये क्या किया उसने तो मैं जा भीतर रसोई में से भोजन डाल दिया अब वे घूमे आए कई घरों में नहीं मिला नहीं मिला, फिर भी महात्मा हुई कि महाराज आप क्या पा लेते, भिक्षा पा लेते, भिक्षा नहीं मिले तो कोई भूख को ही पा लेते, अब भूख भी पाई जाती है, भूख को खा लिया, खा लिया क्या, आज भोजन नहीं करेंगे, भगवान की इच्छा नहीं है, नहीं करेंगे बोले, अब सही जाओ से तो है नहीं, पंचेश का ऐसा विचार है, नहीं मांगना नहीं मांगना, एक माइंड में बांकुड़े की बात हुई, गए भिक्षा के लिए, जो साग गाल दिया, साग हिंदू निकाल दिया, भूमि दूध को ना करे, कि मैं क्या, जब तक हमारी पूर्ति नहीं हो तो निश्चित चीज देते ले लें, बोले सागर में दूध कैसे ले लिया आपने, निकाल दिया ले लिया, तो नादाय का वहां अधिकार है हमारा, हमारा मांगने का अधिकार नहीं है, नादाय का अधिकार नहीं लेंगे हम, नहीं लेंगे, वो जगदीशानंद जी महाराज अभी दीक्षित नहीं है, आया करते सत्संग में, तो वे वृंदावन गए बद्रीनारायण, बद्रीनारायण के लिए तो एक साधु के अंगुली की पीड़ हो रही थी, तो पीड़ हुई तो किसी ने कहा महाराज यहाँ अस्पताल है, उसको मलम पाटी कर लेते हैं, वहां जाओ तो ठीक हो जाएगा, तो वह उत्तर दिया संतों ने कि भाई मैं पीड़ तो सह लूंगा पर तू मलम पट्टी कर दे ये नहीं सह सकता, ये मांगना सह नहीं सकता मैं, इसमें पीड़ होती है, ये पीड़ तो मामूली है, वो पीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी, इस बात को मैं नहीं सह सकता, अब कोई समझे इस बात को, सिंहदेशानंद कई बदल मारा में एक साथ मिले थे मेरे पास पहले असल छात्र ठीक छात्र तू मैंने ये अंडी चीज दे, मेरे साथ रहने वालों ने एक डोरी मांग ली, मैं कभी नहीं मांग, वो नाराज हुई मेरे से चले गए कि मांगी क्यों आपने, कोई लाड दे तो दे लेते नहीं, अपने आवश्यकता है, एक किसी ने दे दी एक किसी ने मांग ली दे दी, अपनी है सही सही, ये साधु की रीति है, साधु मांगता नहीं होता है, ता गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कछु नहीं सहे सहसा बार संगवा से एक डोरी मांग ली, मैं कभी मांग, वो नाराज हुई मेरे से चले गए कि मांगी क्यों आपने, कोई लाड दे तो दे लेते नहीं, अपने आवश्यकता है, एक किसी ने दे दी एक किसी ने मांग ली दे दी, अपनी है सही सही, ये साधु की रीति है, साधु मांगता नहीं होता है, ता गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कछु नहीं सहे सहसा बाल संगवा सब, तो मांगेगा ही हो, तो मांगेगा शब्द बनता है, मांगता है, आप साहब आ जा ले ली नहीं आ जाए नहीं सही है जो सही पूरे हैं मर्द भेज हाल में खुश हैं, तो क्या समझे वो कामना को इच्छा को, क्या कामना होती है, क्या आवश्यकता होती है, क्या मांगना होता है, इसकी याचना होती है, नहीं समझते, जिन संतों के आचरण में ये बात आती है वे समझते, हरे नहीं समझ पाते, समझते नहीं, शिक्षा ही नहीं मिलती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं पता ही नहीं, होश ही नहीं, बेहोश ही सबसे अच्छे अच्छे पंडित हो गए बेहोशी में परवाह ही नहीं, समझने की इच्छा ही नहीं है, हमारे को तो दुख होता है इस बात का होता है, आप समझते नहीं इसका नहीं है, आप समझने की चेष्टा क्यों नहीं करते, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, और प्रश्न क्यों नहीं करते मेरे सामने, मैं बहुत दूर तक मैंने समझा है, पूरा समझता नहीं चाहता हूं मैं, पर कामना क्या है इसको समझा है, निष्काम भाव नहीं समझते, अच्छे अच्छे पंडित ने सठ शास्त्री पंडित को पूछ लो नहीं बता सकेंगे, यार थोड़ी है इनमें किसी को पूछ तो कोई जान वाले बता देंगे, ये सत्संग के बिना बात समझ में नहीं आती, अब इसलिए बता हुआ मैं समझता हूँ कई भाइयों के नया समझाई नई बात कि ये मेरे सात्विक मिला है मेरे को मिलता है सात्विक कि स्वामी समझते नहीं अब क्या बताऊ मैं खुद गर्व नहीं समझता नहीं हूँ मैं कम समझता हूँ मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को मैं समझता नहीं मैं पूरा समझता हूँ समझ मानता हूँ मैं पर वे कहते हैं कि स्वामी जी रुपयों के तत्व को समझते नहीं अच्छे धनी वे कहा स्वामी जी नहीं समझते मेरे को मन में आती मैं तुम्हारे से दूना समझता हूँ क्यों तुमने रुपया है कर देखा मैंने रुपया रख करके रुपया त्याग कर दू देखा इस बात मैं समझता हूँ तो आप कैसे समझते हो आप रुपयों को समझते हो त्याग को नहीं समझते मैं रुपयों को समझता हूँ त्याग को नहीं समझता तो दूना समझता हूँ तुम्हारे से अभिमान देता हूँ मैं समझ नहीं मैं आप कम समझते हमारे इतना समझ नहीं है आप लोग बहुत समझते व्यापार में लाकर मेरे को बैठा दे तो कैसे रुपये समझता नहीं भाई तो मैं समझता नहीं ये नर्स इस रूप कहता है कि पंडित जी पास में स्वामी जी पास में बड़ा औजार है मैं कम समझता हूँ ठाकुर समझ कम ये बड़ा अस्त्र है आप ब्रह्मास्त्र है तो मेरे जीवन में बीती हुई बात है इनको मैं जानता हूँ देखता हूँ जानना नहीं चाहते सीखना नहीं चाहते बस आचरण करना ही नहीं चाहते अब क्या करें कैसे बताओ बता मैं तो उल्टा असर होता है कि अपने 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 महिमा करें अपने ठीक ना अपने पुस्तकों ठीक समझे और निंदा कर रहे अरे निंदा में बैर हो रही है हर बात को निंदा मानते ऐसा मन करता हूँ घटती है मैं सुनता हूँ व्यवहार होता है ऐसा
साधु भिक्षा के लिए जावे
हाँ।
और उसको वो घर वाले पूछे भी रोटी लोगे या आटा लोगे तो उस समय साधु वो क्या कहना चाहिए
आटा नहीं लाएंगे ठीक है नहीं कहने का तो अधिकार है हमारे वो
रोटी लेंगे ऐसा नहीं बोलना
ऐसा नहीं बोलना चाहिए आटा नहीं लेते भाई ऐसे प्रश्न आप पूछो मेरे से ऐसे ऐसे पूछो अटकर से क्या करेंगे भिक्षा वास्ते ही गए हैं तो क्या लोगे अब क्या लोगे क्या है भूख पेट लगी है मैंने पूछा क्यों आया है वो भूख लग गई बोली भूख लग गई तो क्या मैं खेत में काम करने को गया आगे और काम करना एक बिल्ले काम करने को दिया और पूछ ऐसा प्रश्न पूछ इसलिए प्रश्न में बहुत खुलासा होती है चीफ प्रश्न ना देने का हमारा अधिकार है जैसे बुखार आया हुआ है रोटी लग भाई लू के दे दो ऐसा करने का अधिकार है मन चौपड़ कर दे दो ये अधिकार नहीं है हमारा घी आप दो थोड़ा सा दूध दे दो ये अधिकार नहीं है बात वही है एक ही बात फर्क क्या इसमें आटा मन नहीं लेते ये कहना चाहे रोटी लेते ये कहना एक ही अर्थ हुआ है दोनों का दोनों का अर्थ एक ही है ना एक होते ही साधु की भाषा है कहने के आसान नहीं है
एक कैसे फर्क है
फर्क क्या हुआ फर्क तो यही है आटा नहीं लेते रोटी लेते हैं चाहे रोटी देते हैं कह दो चाहे आटा नहीं लेते हैं कह दो फर्क क्या आया
लेना तो नहीं कहा ना वहाँ का नहीं लेंगे यानी ये आटा आप लेना चाहते आटा नहीं लेते हैं
कमी है हाँ वो दो रोटी दो मत दो आप
मांगी तो नहीं है फिर बाद में आटा ना तो ये नहीं क्या
विश्वास दिन में आप ऐसे प्रश्न पूछो व्यवहार का सत्य भाषण करे उन्हें कैसे करना चाहिए तो मेरे अध्ययन है कि सत्य भाषण केवल सास बोलना इतनी नहीं है इसका अध्ययन करना होगा इसमें पढ़ाई करना होगा ठीक है, संपर्क शक्ति बोल सकेगा, ये तो बोल नहीं सकेगा। उनमें ध्यान में आए बंदी स्वामी होते हैं, वो ब्राह्मण लेते हैं प्राय से, कोई कोई दूसरों के लिए लेते हैं।
दो का मना तो किया है, एक तो जो ही है ना पति और एक जो ये चंडा आदमी है, इनका तो मना किया है।
नहीं, और की भी ना किया है, यायावर होता है और होता है, उसके भी नियंत्रण चाहिए। मानो छोटे भाई का ब्याह पहले कर दिया तो उस घर की दिशा नहीं करनी चाहिए।
ये तो पता नहीं होता ना बात, घूमने वाला था जो
और तो उसको पता नहीं, तो दोष नहीं है, पता लग जाए तो उसके घर की दिशा नहीं करनी चाहिए। बहन बड़ी बैठी है, छोटे भाई बहन की ब्याह कर दिया, वो घर की दिशा नहीं लेनी चाहिए।
बहन बड़ी बैठी है,
हाँ,
और छोटी
छोटे भाई का ब्याह हो गया, छोटी बहन का ब्याह कर दिया, उसके रंग नहीं जाना चाहिए।
मालूम हो तो
मालूम ही हो, मालूम नहीं क्या करे। हम तो पहले कहते हैं गर्भ बात किया, अभी भिक्षा मत देना है, क्या देता हूँ, अब कोई दे दे तो मैं हमें क्या पता, कोई सुगंधी तो आती नहीं मिली भाई। उसका अन्न बहुत भ्रष्ट है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बहुत खराब अन्न है, उनका अन्न तो खराब है जो उन्होंने गर्भ गिराया है।
वो कहते हैं इसमें दोष क्या है गर्भपात में, जिसका आप अन्न नहीं लेते।
भ्रूण हत्या है, भ्रूण जन्म हत्या है, क्यों भ्रूण हत्या है, गर्भपात करना भ्रूण हत्या है। जैसे ब्राह्मण को मार दिया क्या हो गया, कीड़ी मर गई, जो ब्राह्मण मर गया, ये बात नहीं है। ब्रह्म हत्या की तरह भ्रूण हत्या है, गर्भपात करना महान हत्या है।
उसका अन्न खाने से अंतःकरण मलिन होता
है, मलिन होता ही है, तो अन्न अशुद्ध है, उसके घर का पानी अशुद्ध है। भ्रूण हत्या करी है उसने।
कई कहते हैं महाराज जी की क्या असर पड़ता है, महाराज जी का अंतःकरण तो निर्मल है, शुद्ध है, वो तो
पता तो निर्मल है, जब अशुद्ध का पता लगे, अशुद्ध में अशुद्ध का क्या पता लगे।
बहन बड़ी बैठी है, भाई का विवाह कर
दिया,
छोटी
रहेगा, क्या पाप होता है,
पाप
ये होता है कि बाप पहले बड़े का करना चाहिए, छोटा करने के अधिकार है, ये अन्याय किया है, अन्याय दोष होता है, पाप और क्या होता है।
बहन के साथ अन्याय
हो गया, हाँ,
जो संस्कार नहीं था नहीं हुआ, उसमें अन्याय क्या हुआ, ये पूछ रहे हैं।
नहीं, संस्कार नहीं होता, आप ही होते आप करते हो, बताओ।
हमने चेष्टा की, नहीं बैठा,
नहीं बैठा तो छोटे कैसे बैठ गया, बड़ी का नहीं बैठा, छोटे कैसे बैठ गया, बैठ के भी नहीं करेंगे भाई, हमारी बड़ी कन्या है, इसका ब्याह पहले करेंगे हम। धर्म के पालन में अगर आराम होता और पैसा मिलता, धर्मात्मा को चोरी की चोरी हो जाती, थोड़ी कठिन पड़ती है धर्म में। धर्म के लिए कष्ट सहता है वो तपस्या, बड़ी तपस्या है वो, जानकर तपस्या इतनी बड़ी तपस्या नहीं होती, तो धर्म के पास में कष्ट होता है।
तो शरीर से लाचार हो, अंधी हो, लूली हो, लंगड़ी हो, तब क्या किया जाए,
क्या किया जाए, क्या किया जाए, उसमें तो बात ऐसी है, तो उसको ब्याह करना ही नहीं है क्या, कहीं अब कह दे कि मेरे ब्याह करना ही नहीं है, क्या कर दे, उसकी बात ही और है। अब लोग नहीं कर दो, हम करना चाहते हैं। हमारे गोविंद भवन के पास में एक बूंदिया अग्रवाल, उसकी लड़की जो पैर से खोड़ी है, वो तो कैसे सुनो महाराज, बहुत जल्दी अवस्था में ब्याह हो गया, ब्याह होने पर बेटा हो गया, सासरे में उसका मान हो गया, ये मेरी देखी हुई बात है। तो ब्याह हो जाना तो हो जाएगा, नहीं होना नहीं होगा, मंत्री साहब नहीं हो उसमें तो लाचारी है, पर आप क्या करते हो, आप अन्याय करते हो, पाप लगता है, न कर सकते पाप थोड़ी लगेगा, आज एक बार भाई पूछा वो गीता गीता मेरे को पढ़ना नहीं आता, क्या करूँ मैं पढ़ना नहीं आता, तुम्हारा पढ़ना नहीं आता तो पढ़ना की तुम्हारी बीमारी है ही नहीं, इसका दोष लगेगा नहीं तुम्हारा, कैसे लग जाएगा, कोई जबरदस्त पाप लग जाएगा, मेरे को बारे को ले चाबू को मारने लगे कि पढ़ो ये फारसी पढ़ो, मेरे को पढ़ना आता नहीं तो मारे मेरे को पढ़ना आ जाएगा, भाई मेरी आता नहीं है मैं कह सकता हूँ, जो नहीं कर सके वो नहीं करे तो करने का दोष नहीं है, वो कर सकते ही नहीं, करने की सामर्थ्य होते नहीं कर पाए उसे दोष लगता है।
भिक्षा में जो भिक्षा के लिए जाते हैं उसमें कोई भी अपने अच्छा दे दे या कैसा भी दे दे वो ठीक,
भिक्षा में जैसा भी मिल जाए वो ठीक है क्या?
ना ठीक नहीं है, लहसुन है प्याज है वही हम देते नहीं, साग लहसुन प्याज नहीं है कि नहीं तो नहीं देंगे, लहसुन प्याज है तो नहीं दे रहे, चल जाओ
क्या सुनार के घर लेनी चाहिए क्या मोरे ने दो
वो अलग अलग भाग है, सुनार की नहीं लेना है ऐसी नहीं, ऐसी भी आती है, और कोई ये जो तेल निकालने तेल की नहीं लेनी चाहिए, आजकल अच्छे अच्छे देशीय अपने अग्रवाल और माहेश्वरी कहने वाले तेल के कल लगाते हैं जिनमें कितनी घड़ियां होती है 20-25 घड़ियां चलती है, अब वह घर भिक्षा ले नहीं ले तो तेल नहीं लेना चाहिए, तेल में सब कम वो दाना को जो पेड़े जाते हैं ना वो पीसे जाते हैं तो उनमें बड़ा कष्ट होता है, कसाई के परे होता है,
जैसे कुम्हार के लिए आता तो मैंने कुम्हार को पतित माना है, कुम्हार को भांडा बनाता है ना उसको पतित माना है, मगर वो काम आजकल बड़े बड़े पजावे लगाते हैं सेट लगाते हैं वो ज्यादा पकाते हैं,
क्या क्या कह रहे हैं,
जैसे कुमार का अन्न इसलिए अपवित्र माना है कि वो आवा पकाता है, इस प्रकार से कई होंगे ईंटों की और की मिले हो,
हाँ बड़े बड़े मिले
तो उनके लिए क्या करना चाहिए, उनका नहीं लिखाना चाहिए,
उनका अन्न नहीं खाना चाहिए, बात ऐसी है, पर वो कहें तो मुश्किल हो जाते हैं हमारे, ना कहने मुश्किल हो जाती है, क्या करें, हाँ।
बाकी छोटे छोटे
गाना कर्म धर्म की गति बड़ी गहरी है, गाना कर्म नो गति गीता में लिखा है, किम कर्म किम अकर्म जी कवियों पे प्रमोहिता, बड़े बड़े पंडित भी जो जाते हैं, गाना कर्म नो गति गीता में लिखा है, कर्म की गति बड़ी गहरी है, तो कर्म की गति गहरी सुन लेते हैं पर उतरते नहीं, क्या गहरापन है इसमें, क्या चीज है, पर
एक पूछते हैं कि हम कई दिनों से मैं राम राम कर रहा हूँ, राम राम करते करते अभ्यास हो गया, शरीर मेरा जड़वत हो गया, और फिर एक बार मुझे ज्योति का दर्शन हुआ, ये क्या ज्योति है, क्या क्या
ज्योति परिणाम होगा, शुरू ज्योति भी शुरू,
तो मुझे क्या समझना चाहिए,
आपको राम राम करते रहना चाहिए, अपना जितने आप कर सको जीव चले तब तो राम राम छोड़ना नहीं चाहिए, करते रहो, इसमें फायदा ही फायदा है,
इस भयंकर कलयुग में भगवान के साक्षात दर्शन हो सकते हैं क्या,
हो सकते हैं,
होते हैं किस उपाय से,
उपाय प्रेम से, गोस्वामी जी को हुए, नरसिंह जी को हुए, कई को हुए, इतिहास होता है इस कलयुग में, कलयुग में सुगमता से होते हैं, जल्दी होते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाता प्रेम से प्रकट हुए ही मैं जाना,
भगवान की पूजा में यदि कोई कामना होगी ये हमारा काम सिद्ध हो जाए, हम इतना मंत्र जपेंगे जाप देंगे तो क्या उचित है,
उचित कामना संसार की कामना करते हो, गधा होता है गधा उसको चरावे और वो भार है ऊपर बापो 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 चलो गधे ने बाप बनावे, गर्व गधे ने बाप बनावे, क्या होता है, तो गर्व जो भगवान से गर्व किया है गधे से बंद करो, कम से कम भगवान से कर लो,
राम नाम का जो प्रचार करते हैं उनका वर्तमान में और भविष्य में फल क्या लाभ होगा?
लाभ बहुत होगा। पर कर्मवार के स्वास्थ्य करते हैं वास्तव में दुनिया के कल्याण के लिए करते हैं तो अपने स्वास्थ्य सिद्धि के लिए करते हैं, मान बढ़ाई के लिए करते हैं, हृदयों के लिए करते हैं। पता नहीं है किस वास्तव करते हैं, भाव के दर से होगा।
कल आपने कहा कि असत को जानने के लिए असत से अलग होना पड़ेगा।
हाँ,
तो कहते हैं ये बात इसलिए समझ में नहीं आती है कि असत के अंदर घुसेंगे तभी तो लोगों के स्वभाव का और का सब पता चलेगा।
तो स्वभाव का पता चलना है कि अपना कल्याण करना है? दुनिया का पता लगा सकते हो आप? नहीं लगा सकते कोई भी, कितने जैसा गहरे उतर हो नहीं समझ सकते। ये तो आपको एक कायदा बताया है, एक कायदा बताने से सैकड़ों प्रश्न हल हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है। मैंने
कहते हैं मेरा शरीर रोगग्रस्त है, जगह जगह आपका सत्संग कर नहीं सकती, तो मैं मुझे क्या करना चाहिए?
भाई जहाँ आशो वहाँ, जहाँ आप पहुँचो वहाँ पहुँचो, नहीं तो हमारी पुस्तक पढ़ो, मेरा सत्संग मेरी पुस्तक पढ़ो, शेर जी की पढ़ो, भाई जी की पढ़ो, अच्छे अच्छे संतों की पुस्तक पढ़ो। पुस्तक पढ़ना भी उनका संग करना है। आज गोस्वामी जी के रामायण हम पढ़ते हैं तो राम और गोस्वामी जी का संग करते हैं, सत्संग होता है। नारायण 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 हो गया, समय हो गया।